ಏ ತಾತ್ಯ ಸರ್ ಗಡಿ ರಗ್ದು एक सूचना और है, दोपहर में कल की भांति आज भी समय भरपूर मिलने वाला है, तो दोपहर में पूज महाराज जी की विस्तार से हम देशना सुनेंगे, तो उसी समय आपको एक नाटक भी दिखाया जाएगा और इन सब बातों के आपको सब प्रमाण खुलासा भी किए जाएंगे, तो दोपहर का समय भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर 2 बजे सभा प्रारंभ होगी, वो अभी बाद में देते हमारे जी।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलं, सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं।
बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आज का दिन जन्मोत्सव का दिन है। जन्मोत्सव के पावन अवसर पर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जो आदि युग के आदि तीर्थंकर हैं, उनका कल रात में जन्म हो चुका है और इस जन्म से आप लोग बड़े खुश थे। हम तो यहाँ नहीं थे, लेकिन पंडाल में उनका जन्म हो चुका था। आप लोग खुश थे, लेकिन हम परोक्ष में खुश थे। और जन्मोत्सव मनाने हेतु वस्तुतः देखा जाए देवगति के सारे देव एकत्रित होते हैं, क्योंकि 3 लोक के नाथ का जन्म होने के पश्चात कौन नहीं चाहेगा इस महोत्सव में भाग लेने का, सभी चाहेंगे। और वही इंद्र यहां जन्म होते ही उनका सिंहासन कंपायमान हुआ और वे अपने अवधि ज्ञान के द्वारा यह जानकर कि भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में, और यह पंडाल एक अयोध्या नगरी के समान है, पुनः नगरी में भी अयोध्या नगरी की स्थापना हुई है। प्रभु का जन्म अयोध्या नगरी में हुई थी, उनका निर्वाण कैलाश पर्वत से हुआ था और शेष तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेय शिखर से हुआ था, यह सब आप लोगों को ज्ञात है। 20 तीर्थंकर सम्मेय शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए और 1 तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश गिरी से, कैलाश शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं और उसमें 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर कैलाश गिरी से निर्वाण प्राप्त करते हैं तो नेमिनाथ भगवान गिरनाश से मोक्ष प्राप्त करते। वासुपूजनाथ भगवान चंपा पुरुष से और एक तीर्थंकर जो 24वें हैं उनका निर्वाण बाबा पुरुष से हुआ। यद्यपि 24 तीर्थंकरों का जन्म नैसर्गिक पद्धति के अनुसार जो परंपरा है भरत क्षेत्र की, वह अयोध्या में जन्म होना और निर्वाण को प्राप्त होना सम्यक शिखर से ही होता है, लेकिन काल दोष के कारण 4 तीर्थंकरों का निर्वाण अन्य क्षेत्रों से और जन्म भी कुछ तीर्थंकरों का अन्य क्षेत्र से होना एक दोष माना जाता है। इस दोष में भी वे तीर्थंकर तो बन ही जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती। आज जन्मोत्सव का अवसर है, आप लोग बड़े उत्सव के साथ जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस जन्मोत्सव में हम तो भाग नहीं ले सकते, पर जन्मोत्सव क्या है इसका उपदेश देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जन्मोत्सव में मुनि महाराज लोग भाग ले सकते हैं क्या? महाराज इसमें क्या आपत्ति है, ये तो बहुत आनंद का दिन है। 3 लोक के प्रभु आदिनाथ का जन्म हो रहा है तो इसमें भाग लेने के लिए क्या आपत्ति है, आप कह सकते हैं। लेकिन वे ही प्रभु आदिनाथ भगवान जिनको केवल ज्ञान होने के पश्चात दिव्य ध्वनि खिरी थी और समो शरण में, ऐसा सब मुनि धर्म क्या है, श्रावक धर्म क्या है, इस सब का उपदेश जिन्होंने दिया था, वे प्रभु ही कहते हैं जन्म महान नहीं होता, मरण महा होता है। जिस जन्म के साथ कोई भी जीवात्मा इस धरती पर जन्म लेता है तो उसमें पूज्यता नहीं होती, स्वयं प्रभु कहते हैं, आदिनाथ भगवान ही कहते हैं, महावीर भगवान भी कहते हैं, 24 तीर्थंकर कहते हैं। जन्म के साथ पूज्यता क्यों नहीं होती? एक तीर्थंकर की पूजा भी हम नहीं करते शास्त्र पद्धति के अनुसार, जन्मे हुए बालक की पूजा नहीं होती। इसका कारण क्या है यह आपको शायद पता नहीं है, यदि पता हो तो एकाध कोई व्यक्ति को बता सकता है। भगवान का जन्म होने के पश्चात वह बालक है, बालक की पूजा क्यों नहीं होना चाहिए? 3 लोक के कल्याणकारी जिनका भविष्य उज्जवल है, मोक्ष प्राप्त करना निश्चित है, ऐसे आत्मा का जन्म यहाँ पर हुआ है और उनकी पूजा ना हो, अर्घ्य ना चढ़ाए। उत्सव तो मना रहे हैं, उत्सव तो मनाने के लिए मना नहीं किया है, उत्सव मनाया जा सकता है लेकिन पूजोत्सव नहीं होता, जन्मोत्सव होता है। जन्मोत्सव सो पूजोत्सव नहीं और पूजोत्सव सो जन्मोत्सव नहीं। क्या कारण होगा कि जन्म लेने के पश्चात उस बालक को हम अर्घ्य नहीं देते? वही आत्मा सर्वार्थ सिद्धि विमान में भी थी, वही आत्मा सर्वार्थ सिद्धि विमान के भीतर रहने वाले 33 सागर की आयु को लेकर के वहां पर पूरे इस आयु को समाप्त करके यहाँ आया। वहां पर जब था वह क्षायिक सम्यक दृष्टि था, यहाँ जन्म लेने के पश्चात भी वही सम्यक दर्शन है और वही सम्यक ज्ञान उस आत्मा के साथ है। और ऐसे आते समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उसमें भी नियम से तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो 4 ज्ञान के धारी बन करके अवतरित होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान। 4 प्रकार के ज्ञानों को लेकर के जन्म लेने वाले ऐसे महान आत्मा और 3 लोक का कल्याण करना निश्चित पहले से ही है, ऐसे बालक का जन्म होने के पश्चात भी वे ही तीर्थंकर कहते हैं कि मेरी पूजा नहीं करना जन्म लेने के पश्चात, बल्कि दीक्षा लेने के पश्चात करना। हाँ, समझ में आ गया। दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा के भीतर पूज्यता आती है। दीक्षा लेने से पहले कौन सी विशेषता रहती है जिसके कारण से हम पूजा नहीं करते? तो यही असयम अवस्था है, यह सांसारिक अवस्था है। पांच इंद्रियों के विषयों को और परिग्रहों को जब तक आत्मा त्याग नहीं करता, अपने जीवन को पाप से मुक्त नहीं करता, अपने जीवन को मंगल नहीं बनाता, पावन नहीं बनाता, तब तक कोई भी आत्मा, चाहे वह तीर्थंकर का हो और कोई सामान्य आत्मा हो, असयम अवस्था में पूजा नहीं होती, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने ही उपदेश दिया है। तो आज के कार्यक्रम में पूजा होती है कि उत्सव होता है? उत्सव होता है, बहुत बड़े प्रमाण में उत्सव मनाते हैं। चतुर्थ काल में तो देव लोग आकर के उत्सव मनाते थे, लेकिन आज हम देव पर्याय को धारण करके, देव तो आते नहीं, देव पर्याय को धारण करके, स्वयं ही इंद्र बन करके, इंद्राणी बन करके, प्रतिन्द्र बन करके, कुबेर बन करके, यज्ञ नायक बन करके, इत्यादि इन पदों को स्वयं ही धारण करके यह कार्यक्रम महोत्सव को अति उत्साह के साथ, विशुद्धि के साथ मनाते हैं। तो उत्सव अलग बात है और पूजा अलग बात है। पूजा का मतलब होता है जिसको हम अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, और अर्घ्य चढ़ाते समय, पूजा करते समय जिस मंत्र का हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, वे मंत्र आठ होते हैं। एक मंत्र जल चढ़ाने के लिए होता है, एक मंत्र अक्षत चढ़ाने के लिए होता है, एक मंत्र धूप चढ़ाने के लिए, पुष्प चढ़ाने के लिए, फल चढ़ाने के लिए, एक एक मंत्र सेपरेट होते हैं। और उन सभी मंत्रों के साथ जो अर्थ जुड़ा हुआ है, वह अर्थ वस्तुतः चिंतन करके आप देख लो, हम अर्घ्य चढ़ाते समय जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों का अभिप्राय भी क्या है, अर्थ भी क्या है, क्या मायना रखते हैं ये मंत्र। जब आप जल चढ़ाते हैं क्या कहते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। जन्म जरा और मृत्यु के विनाश के लिए यह मैं जल चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ। जल को क्यों चढ़ाया जा रहा है, जल निर्मल है, जल किसी भी विकार को ग्रहण नहीं करता, वह एक निर्मल वस्तु है। जल जैसे जैसे, जैसा जैसा जल बहता है, बहता बहता ही निर्मल हो जाता है। और उस बहने वाले जल को भी अगर आप फिल्टर कर देते हैं तो पीने के लिए भी योग्य हो जाता है। ऐसा जल एक ऐसी वस्तु है जो अत्यंत निर्मल होता है। उस निर्मल वस्तु को पूजा के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं, तो यह इसके पीछे हमारी एक भावना रहती है। जन्म जरा और मृत्यु, ये प्रत्येक जीवात्मा के साथ अनादिकाल से तीनों विषय जुड़े हुए हैं। जन्म भी जुड़ा हुआ है, मृत्यु भी जुड़ी हुई है, और जरा भी। जरा यानी क्या, बुढ़ापा। जन्म लेते हैं तो हम बुढ़ापे अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आज जिसका जन्म हुआ है वो कभी बूढ़े अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे, वो यंग ही यंग रहेंगे, क्योंकि वो शलाका पुरुष हैं। शलाका पुरुषों का जन्म लेने के पश्चात वृद्धावस्था आती नहीं है, उम्र तो हो जाती है लेकिन उनके शरीर में सुंदरता की कमी नहीं आती। उनके शरीर में जो आकर्षणता होती है वह आकर्षण भी कम नहीं पड़ता। अंतिम समय तक जैसे पहले होते हैं यंग अवस्था में, वैसी ही अवस्था उनकी वृद्धावस्था में भी होती है। वृद्धावस्था है नहीं वो, लेकिन उतने उम्र होने के पश्चात भी सुंदरता बनी रहती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान का जन्म आज रात में हुआ है, उनका जन्मोत्सव यहाँ पर मनाना है। और प्रवचन के लिए इतना समय तो है नहीं, संक्षिप्त में आज प्रवचन होगा, केवल आधा घंटा दिया गया है। संक्षिप्त में मैं आज इतना कहना चाहूँगा, आपको विवेक जागृत हो इस सद्भावना से, आप जैन हैं, है ना, कौन से जैन हैं सबको पता है, महाराज कहने की जरूरत नहीं। हम दोनों हाथ उठा करके कहते हैं, हम दिगंबर जैन। ओहो, इतना तो पता है, लेकिन इसके पश्चात की बात पता नहीं है, तो अपन दिगंबर जैन हो भी कैसे सकते हैं, प्रश्न उठता है। अपन दिगंबर जैन हैं। दिगंबर का तात्पर्य होता है कि जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को त्याग करके दिगंबर दीक्षा लेकर के, ये दिगंबरत्व दो प्रकार का होता है, अंतरंग दिगंबरत्व और बहिरंग दिगंबरत्व। बहिरंग दिगंबरत्व का होना, बहिरंग समस्त वस्त्र आदि को त्याग करके नग्न मुद्रा को धारण करना, ये बहिरंग दिगंबरत्व है। और इस बहिरंग दिगंबरत्व के साथ अंतरंग दिगंबरत्व को धारण करने का मतलब होता है, बहिरंग जो परिग्रह होते हैं जिसके वजह से हम दिगंबर नहीं कहलाते, उनका त्याग करना, उनकी इच्छा नहीं रखना, उनके मूर्छा भाव को छोड़ना, उनके मोह ममता को त्यागना, और मोह ममता जिन वस्तुओं के प्रति होती है उसी ममता को त्यागना, ये अंतरंग दिगंबरत्व है। संसारी प्राणी मोह माया में अटकता है, और मोह माया ये क्या है, जड़ जड़ पुद्गल वस्तु है। इन जड़ पुद्गल वस्तुओं में बार बार वह चिंतन करता है कि ये मेरे लिए हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसी के माध्यम से मैं सुखी हूँ, पीछे भी इसी के कारण से सुखी था, अभी भी इसी के कारण से मैं सुखी हूँ, भविष्य में भी जब तक मैं सुखी रहूँगा इसी के निमित्त से रहूँगा, ऐसे पर वस्तु को सुख का कारण समझ करके उन वस्तुओं के प्रति ममता रखता है। अगर बाह्य वस्तु, सोचिए, अगर बाह्य वस्तु सुख के लिए कारण होते तो तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती आदि ये बाह्य वस्तुओं को छोड़ करके दिगंबर दीक्षा क्यों लेते। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि तीर्थंकर सब कुछ छोड़ रहे हैं तो सुख अन्यत्र कहीं और जगह है, पर वस्तुओं में, बाह्य वस्तुओं में, इंद्रिय विषयों में, इन पुद्गल पदार्थों में सुख नहीं है, यही सत्य है ना। हाँ, यही सत्य बात आज के जन्मे बालक के भीतर घटित नहीं होती, इसलिए स्वयं को बालक मान करके वे बालक भी, अवधि ज्ञान के धारी बालक भी कहता है, हे श्रावकों, हे देवों, हे भव्यात्माओं, यदि मेरी पूजा तुम आज ही करते हो तो अविवेकी हो। मेरी पूजा आज नहीं करना, मेरी पूजा उस दिन करना जिस दिन मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा। पंच पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन पंच पापों को त्यागने के बाद पांच महाव्रत प्रकट होते हैं आत्मा के भीतर। संकल्प के साथ ही इन पंच पापों को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। पांच प्रकार के पाप, हिंसा को छोड़ने पर अहिंसक होता है आत्मा, असत्य को छोड़ने पर सत्यवान बनता है, चोरी को त्यागने पर अचौर्य धर्म को धारण करता है, और परिग्रह को त्यागने पर अपरिग्रह महाव्रतधारी बनता है। ये जो पंच पाप हैं, इन पंच पापों में आप बता सकते हैं सबसे बड़ा पाप कौन सा होगा? कौन सा? परिग्रह। जन्म के साथ भगवान दिगंबर ही जन्मे थे, वो परिग्रह नहीं चाहते थे, लेकिन बाल अवस्था है ना, बाल अवस्था में बालक को बाह्य परिग्रह को देने वाले कौन होते हैं? उनके माता पिता। अलंकार करना, वस्त्राभूषण देना, ये कार्य कौन करते हैं? उनके माता पिता भी करते हैं, और विशेष रूप से इस दिन, तो जिस दिन बालक जन्मता है, इंद्राणी उस बालक को बाहर लाने के लिए जब गर्भगृह में प्रवेश करती है तो एक बालक को सुलाती है और एक बालक को उठा लेती है। जिस बालक को सुला करके जिस बालक को उठा लेती है, जिसको सुलाया है वो नकली बालक होता है, और जिसको उठाया बाहर ले आए, इंद्र को सौंप दिया, देवेश को सौंप दिया, वह बालक असली बालक होता है, वही तीर्थंकर होता है। पर आखिर ये काम इंद्राणी क्यों करती है, पता है ना आपको? ऐसा नकली बालक को तैयार करके सुला करके असली बालक को ले जाने का काम इतना प्रयास पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है? तो इसका कारण यह है, माता को दुख नहीं होना चाहिए। जो तीन लोक के महान दिव्य आत्मा का जन्म हुआ है उसके प्रति माता की ममता किस चरम सीमा पर रहती है, ये कल्पनीय नहीं है, शब्दातीत है। और ममतामयी वह माता जिस बालक को जन्म लेती है, एक क्षण के लिए भी दूर हो जाए तो माता को ठेस पहुंच सकता है। माता दुखी हो सकती है कि माता का हृदय पीड़ित तो हो सकता है। पीड़ा नहीं पहुंचाना है तो क्या करे? यही विचार किसके मन में आया? इंद्राणी के मन में आया। और माता को सुखद नींद ऐसा जादू करती है, सुखद नींद से सुला करके जो जागता हुआ बालक है उस बालक को गोदी में उठा करके एक बालक को सुला देती है और बाहर चुपचाप आ जाती है। माता की नींद नहीं खुलती। माता समझती है कि ये जो बालक है यही मेरा बालक है, ये समझ करके नींद नहीं खुलती। और कब तक नींद नहीं खुलती पता नहीं, जब तक कि ये बालक जाएगा सुमेरु, कहाँ पर? पांडुक शिला पर, सुमेरु पर्वत के पांडुक शिला पर ले जाएंगे वैभव के साथ। और लौट आने तक वह बालक सोता हुआ रहता है, बाद में सौंप दिया जाता है। देखिए आप जैन धर्म की अहिंसा की क्रिया कितनी बड़ी सूक्ष्म होती है। माता को भी दुख नहीं देना, दुख देना हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, अपना धर्म अहिंसक है ना, तो शची हिंसा कैसे कर सकती थी? बालक उसका है, उसको लेने का अधिकार हमें क्या है? लेकिन तीन लोक के नाथ की महिमा को तीन लोक में फैलाना है, प्रचारित करना है और भव्य जीवात्माओं का मन, आत्माओं के मन को आकर्षित इस ओर करना है ना। इसी उद्देश्य से वह ये कार्य करती है। और ये कार्य करने के पश्चात ही वो अहिंसा पद्धति से उस बालक को उठा करके ले जाती है। सारे के सारे देवगण, देव परिवार, सारा स्वर्ग यहाँ अवतरित होता है बालक को उठा करके पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते। यहाँ पर जन्माभिषेक के वक्त बालक कोई संयमी नहीं होता। जिसका अभिषेक कर रहे हैं ना, ये बालक साक्षात बालक है, तीर्थंकर बालक है। ये संयम अवस्था में नहीं होता। संयम अवस्था में न होने वाले इस बालक का जो अभिषेक होता है, जिस प्रकार सामान्य रूप से इस धरती पर जो भी जन्म लेते हैं, जन्म के पश्चात बालक का स्नान तो कराते ही हैं, परंतु हमारे इस सामान्य स्नान के साथ तीर्थंकर के स्नान की तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग ही पूरा अवतरित हुआ है इस स्नान के लिए, इस अभिषेक के लिए। जिनाभिषेक अलग होता है और जन्माभिषेक अलग होता है। नित्य हम जो मंदिर में जिनाभिषेक करते हैं, जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं, इन जिन प्रतिमाओं का जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक है। और ये अभिषेक क्यों करना पड़ता है? कल मैंने कहा था, साक्षात भगवान का तो कोई भी अभिषेक नहीं कर सकता। अरहंत परमेष्टि पद को प्राप्त करने के बाद, अरहंत पद को प्राप्त करने के उपरांत अभिषेक नहीं हो सकता। उनके आभा मंडल में, उनके प्रभा मंडल में कोई भी प्रवेश करके स्पर्श भी नहीं कर सकता है और न ही अभिषेक कर सकता है। देवगण भी पुष्प वृष्टि करते हैं तो ऊपर से पुष्प वृष्टि होते ही उनके शरीर को स्पर्श किए बिना वे पुष्प भी साइड में गिर जाते। ये महिमा केवल ज्ञान के उपरांत उत्पन्न होती है। ये केवल ज्ञान के पश्चात का अतिशय है और यह अतिशय बहुत बड़ा अतिशय। यही कारण है कि केवल ज्ञान के पश्चात उस अरहंत परमात्मा पर भी जैसे सामान्य मुनि अवस्था में तीर्थंकर हो या सामान्य कोई मुनि महाराज हो, उनके ऊपर उपसर्ग हो सकता है, मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग हो सकता है, देवों के द्वारा उपसर्ग हो सकता है, तिर्यंच प्राणियों के द्वारा उपसर्ग हो सकता है, नैसर्गिक रूप से कोई भूकंप आदि नैसर्गिक कोई कारण बन जाए उसके माध्यम से भी उपसर्ग हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान के पश्चात कोई भी मुनि हो उपसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे वे केवल ज्ञानी सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, केवल ज्ञानियों को स्पर्श करना छूना ही जब असंभव है तो केवल ज्ञानियों पर उपसर्ग करना कैसे संभव हो सकता है, नहीं हो सकता, ये विशेषता होती है। आज जन्मे बालक का नाम है आदि कुमार, आदिनाथ नहीं, आदि कुमार। आदिनाथ का जन्म नहीं हुआ है, आदि कुमार का जन्म हुआ है, आदि बालक का जन्म हुआ है, और धीरे धीरे वे कुमार अवस्था को प्राप्त करेंगे। कुमार अवस्था प्राप्त करने के उपरांत युवा अवस्था को प्राप्त करेंगे, युवा अवस्था प्राप्त होने के उपरांत उनको वैराग्य की प्राप्ति होगी। जिस दिन वैराग्य होगा वो दृश्य देखने लायक रहेगा, वो कल का दिन है ना, प्रतीक्षा करो कैसे इंद्रिय विषयों को त्याग करके, इंद्रिय भोगों को त्याग करके वृषभनाथ भगवान इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और आत्म साधना के लिए निकल पड़ते हैं, रत्नत्रय के धारी बनते हैं, संयमी बनते हैं, ये दृश्य कल के दिन दिखाया जाएगा। आज जन्मोत्सव है, इस जन्मोत्सव के अवसर पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिनाभिषेक और जन्माभिषेक में अवश्य अंतर होता है। जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता और जिनाभिषेक कहां पर होता है, पांडुक शिला पर नहीं। जहां अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं उन चैत्यालयों को मूर्ति को ला करके देवगण भी पांडुक शिला पर स्थापित करके अभिषेक नहीं करते, पांडुक शिला अलग होती है। वहां पर तो केवल इस आर्यखंड में, इस ढाई द्वीप में जितने भी आर्यखंड हैं, आर्यखंड में जन्म लेने वाले केवल तीर्थंकरों का मात्र अभिषेक होता है पांडुक शिला पर, और बालक का अभिषेक होता है, वहां पर जिनाभिषेक नहीं होता। जिनाभिषेक होता है मंदिरों में, अकृत्रिम चैतालयों में जिनाभिषेक होता है। नंदीश्वर द्वीप में जो 52 अकृत्रिम चैतालय हैं, प्रत्येक मंदिर में जाकर के यही इंद्र अपने देव परिवार समेत अभिषेक करता है। अभिषेक करने के लिए इतने दूर जाना पड़ता है, कितनी दूर है, इंद्र के लिए तो बहुत पास है लेकिन हम लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य जा भी कैसे सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी मर्यादा है। मनुष्य ढाई द्वीप के बाद बाहर नहीं जा सकेगा, वहां पर जाने वाले तो केवल देव होते हैं। देव उस 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में जाकर दिव्य रत्नमय जो प्रतिमाएं हैं उनका अभिषेक करके धन्य धन्य हो जाते हैं अकृत्रिम चैतालयों में। परंतु वही इंद्र, वे ही सारे देवगण जब साक्षात समोशरण में भगवान के सामने पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, अपने मन को उज्ज्वल बना लेते हैं, तो अंत में यह अगर भाव कर लें, हम जिनाभिषेक तो करते हैं अकृत्रिम चैतालयों में, साक्षात जिन भगवंत का अभिषेक क्यों नहीं करें, इस विचार से यदि भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ उस सीमा तक बढ़ सकते हैं जहाँ तक बढ़ना चाहिए, उसके अंदर प्रवेश नहीं होता। कैसा गुरुत्वाकर्षण है, देखो हम संसारी हैं, संसार में रह करके जिन पाप कर्मों को हम बांधते हैं उनको हमें धोना है अभिषेक करके, अभिषेक करके उनको दूर करना है, धोना है और अपने आत्मा को उज्ज्वल बनाना है। जिनेंद्र भगवान का जब हम अभिषेक करते हैं तो एक एक पाप कर्म के परमाणु अपने विशुद्धि के माध्यम से रोमांचित होकर के, जब भक्त श्रावक कोई अभिषेक करता है, इंद्र भी करता है, रोमांचित होकर के करता है तो एक एक पाप प्रकृतियां झड़ने लगती है। यही पाप प्रकृति दूर होने से अपने जीवन को सुख मिलता है। जब पाप कर्मों को दूर करेंगे अभिषेक के माध्यम से, आज सुबह अभिषेक किया मान लो किसी मंदिर में, अभिषेक करके आए और उस समय हमने इतनी विशुद्धि बढ़ा ली अपने मन में कि उस विशुद्धि के कारण से दिन भर में उदय में आने वाले जो कर्म थे, अशुभ कर्म थे, वे अभिषेक के कारण से धुल गए और धुले हुए कर्म लौट करके नहीं आते, वो फल नहीं देते और वो कर्म ऐसे थे अगर उस दिन अभिषेक नहीं किया होता तो घर जाते जाते गाड़ी पर एक्सीडेंट होने की संभावना थी और अभिषेक के कारण से वो दुर्घटना टल गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप सुख के लिए इधर उधर भागते हैं, भागने की जरूरत नहीं। ऐसे तीन लोक के नाथ वीतरागी भगवान का जब आप नित्य अभिषेक और पूजन करेंगे और रोमांचित होकर के विशुद्धि के साथ जब अभिषेक करेंगे तो इसमें कोई शंका नहीं कि दिन भर आप सुखी रहेंगे, कोई भी दुर्घटना आपके लिए नहीं घटेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, उद्योग अच्छा चलेगा, परिवार बहुत सुख में रहेगा। इस प्रकार की महिमा वीतरागी प्रतिमा का दर्शन करने से होता है और स्वर्ग के सारे देव वीतरागी भगवान का ही दर्शन पूजन करते हैं और हमारे लिए ये विवेक नहीं रहता हम किस किस का अभिषेक करने लगते हैं। वीतरागी भगवान को भी थाली में रख दिया और रागी देव को भी थाली में रख दिया और दोनों का अभिषेक किया, दोनों का गंधोदक लिया, दोनों की पूजा की, ये अज्ञानता की क्रिया हम कर लेते हैं और यही अज्ञानता की क्रिया ही पुनः कर्म बंध के लिए कारण बनता है और वही कर्म बंध हमारे लिए विघ्न आदि उपस्थित करता है। जो जैन धर्म के श्रावक धर्म के आचार विचार होते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि होते हैं, इसके पीछे एक विवेक का ज्ञान भी आवश्यक है। अपन कौन से जैन हैं? श्वेतांबर जैन क्या दिगंबर जैन के जैन है ही नहीं, दिगंबर जैन कुल में, कुल से तो हम दिगंबर जैन कहलाते हैं। किस कुल में जन्मे? दिगंबर जैन कुल में हम जन्मे हैं। लेकिन आपको दिगंबर जैन क्यों कहा है इतना भी विचार कभी नहीं किया है और नहीं कभी सुना है, पहली बार मैं सुना रहा हूँ। ये सोच के चलो कि अपन दिगंबर जैन क्यों हैं, दिगंबरों के उपासक और दिगंबरों के पूजक होने से अपन को दिगंबर जैन ये सरनेम पड़ा है। जैन मतलब क्या? जीतने वाले को जैन कहते, जो जीत रहा है, जीतने में लगा हुआ है, जीतने का पुरुषार्थ जिनका जारी है वो जैन है। और क्या जीतना? अंतरंग में जो अशुभ कर्म होते हैं उनको जीतना और बहिरंग में जो पंच पाप होते हैं उन पंच पापों को जीतना, असंयम अवस्था को जीतना और जैन बनना, ये हमारा कर्तव्य होता है। हम पूजा क्रियाकांड भी मंदिरों में करते हैं तो सोचे समझे बिना करते हैं, हम उन परंपराओं को, उन रूढ़ियों को रूढ़ कर लेते हैं जो अपने जीवन के लिए अनावश्यक हैं, उसके संबंध में हमारे लिए कोई विशेष ज्ञान नहीं रहता, विचार नहीं रहता। दूसरा कहता है इसलिए हम करते हैं, पहले से चला आ रहा है इसलिए हम आज करते हैं, कि बस इतने मात्र में हम अपनी धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों को पूरी करते रहते हैं और ऐसा ही जीवन व्यतीत हो जाता है। अंत में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। पिवर जो पुण्य मिलना चाहिए था वीतरागी भगवान के पूजन अभिषेक इत्यादि से, उनके जाप ध्यान इत्यादि से जो पुण्य एकत्रित करके अपने जीवन के समस्त संकटों को दूर करना चाहिए था वो कार्य तो किया नहीं। अज्ञानपूर्ण क्रियाएं, भावहीन क्रियाएं मनुष्य के लिए फलदायी नहीं हो सकती। मनुष्य धार्मिक क्रियाएं करे तो भी उनकी परीक्षा करके करे, कौन सा है और कौन सा उपादे, क्या छोड़े क्या करें, उसका निर्णय करके करें, देखा देखी न करें। बहुत लोग करते हैं इसलिए उसमें शामिल होकर के अपन न करें, ये विवेक ज्ञान बहुत आवश्यक है। तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि मैं बालक हूँ, तीन लोक का नाथ होकर के जन्मा हूँ, इंद्र स्वयं मुझे ले जाकर के पांडुक शिला पर अभिषेक कर रहा है, तो मेरी पूजा देव ही जिनकी जिनका उत्सव मना रहे हैं पांडुक शिला पर बिठा करके जन्मोत्सव जन्माभिषेक कर रहे हैं, उस बालक की पूजा इंद्र ने भी नहीं की। उदक चंदुल तंदुल पुष्प कह कह करके एक अर्घ भी नहीं चढ़ाया, क्या किया? अभिषेक किया, नमन किया, तो नमन में भी नमोस्तु नहीं बोला, ये नमोस्तु बोलने का जो शब्द है, नमोस्तु, जय जिनेन्द्र, वंदामी, इच्छामी, जो ये चार पद है ना अभिवादन के, ये बड़े मायने रखते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। इसके पीछे पूरा जैन धर्म का सिद्धांत खड़ा है। नमोस्तु केवल हम उन्हीं को बोलते हैं जो संयम को धारण कर चुके हैं, या उस संयम के बल पर अरहंत पद को प्राप्त कर चुके हैं, या तो निर्वाण को प्राप्त करके मोक्ष दशा में पहुंच चुके हैं, उन्हीं को हम नमोस्तु पद का उच्चारण करते हैं। अन्यथा श्रावक श्रावक के लिए नमोस्तु क्यों नहीं करता? आज जन्मा हुआ तीर्थंकर बालक भी एक श्रावक के रूप में ही तो जन्मा है ना, एक श्रावक ही तो है, गृहस्थ अवस्था तो है, परिग्रह अवस्था तो है। इस परिग्रह अवस्था की पूजा जैन धर्म में नहीं होती। चाहे वो देव हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे राजा हो, चाहे माता पिता हो, इनकी पूजा नमोस्तु कह करके नहीं होती, अर्घ्य चढ़ा करके नहीं होती। अर्घ्य चढ़ाना केवल किसको? पंच परमेष्टियों को। और ये सारे 24 तीर्थंकर दीक्षा के पश्चात संयमी हो जाते हैं, तब वो कहते हैं संयम अवस्था में खूब तुम पूजा कर लेना, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा, तुम अपने पाप कर्मों को धो करके एक श्रेष्ठ श्रावक बन जाओगे, और उसके माध्यम से जब तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो संकट उत्पन्न करने वाले पाप कर्म कहाँ से आएंगे तुम्हारे जीवन में। ये है जैन धर्म की व्यवस्था। आप अपने मंदिरों को टटोलें कि उन मंदिरों में दिगंबर वीतरागी प्रतिमाओं की पूजा होती है या सरागी की भी, विवेक से सोचना। और विवेक से सोचे बिना धर्म का लाभ तो जीवन में नहीं हो सकता है। धर्म इतना आसान थोड़ी है कि हम जिस किसी प्रकार से अपने मन से क्रियाएं कर ले और धर्म अपने जीवन में आ जाए, और हम उन क्रियाओं को करते हुए अपने आप को दिगंबर जैन समझे, संभव नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों ने संयमियों की ही तुम पूजा करो, नमोकार मंत्र में 5 ही पद हैं, अन्य कोई राग पद तो है ही नहीं। नमोकार मंत्र में कोई देव है क्या? बोलो, कोई देव आदि? सबसे बड़े देव देवलोक में कौन होते हैं? सौधर्मेंद्र है? सर्वार्थ सिद्धि में तो और बड़े हैं, वो तो आते नहीं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देव तो आते नहीं, इसलिए नहीं पूछते, हम ये कह सकते हो। लेकिन आने वाले देवों में भी सबसे बड़े देव कौन हैं? सौधर्मेंद्र है ना। इन मंदिरों में सौधर्मेंद्र की पूजा क्यों नहीं होती? अगर राग की ही पूजा करना है और रागी की ही पूजा करना है तो रागी देवों के मालिक सर्वश्रेष्ठ होगा ना, तो उनकी पूजा क्यों ना हो, होना चाहिए। हम उन देवों को छोड़ दिए, लेकिन जो देव इंद्र की आज्ञा में रहते हैं उन देवों की पूजा हम करने लग गए तो ये अविवेक है। इसमें सुधार होना चाहिए। ये अविवेक पूर्ण क्रिया यदि हमारे माध्यम से हो जाती है तो इसके माध्यम से हमारे पाप कर्म कटते नहीं, दूर नहीं होते, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। असंजदम न वंदे, असंयमी वंदनी नहीं होता, ये जैन धर्म की घोषणा है। असंयमी वंदनी नहीं होता, असंयमी केवल जय जिनेन्द्र के योग्य होता। असंयमी की पूजा करके उसकी उस उनके प्रति कोई कामना जब हम किसी प्रकार से करते हैं तो कामना के कारण से तो इनकी पूजा हो रही है। उनकी धारणा ये होती है ये असंयमी देव हमारे लिए सांसारिक सुख भोग वैभव आदि देते हैं, और वीतरागी देव परमात्मा ये भोग वैभव आदि दे नहीं सकते क्योंकि इनके पास कुछ नहीं होता है, ऐसी हमारी समझ है। लेकिन ये समझ बहुत गलत है। वस्तुतः देखो तो जिनेन्द्र भगवान के निमित्त से ही सब कुछ मिलता है। वीतरागी जिन भगवंतों की प्रतिमा इंद्र देव भी कर रहा है उनके लिए सुख की क्या कमी है, भोग वैभवों की क्या कमी है? इंद्र अपने जिनको हम मंदिर में रख कर के पूजा करते हैं ना, इंद्र देवता क्यों नहीं करना चाहिए फिर? अकृत्रिम चैतालयों में रहने वाले उन्हीं भक्त देव आदि की जो प्रतिमाएं होती हैं उनकी पूजा इंद्र क्यों नहीं करता? करना चाहिए ना, इंद्र को भी करना चाहिए। यदि इंद्र के लिए इन देवों की पूजा भक्ति से सुख मिलता है तो दोनों वीतरागी भगवान की भी पूजा करें, और वो जो अकृत्रिम चैतालय में साइड में उनकी भक्ति करते हुए चामर ढोरते हुए हाथ जोड़ करके खड़े हैं उनकी भी पूजा इंद्र करे। करता है कि इंद्र? नहीं, केवल उसी परमात्मा की पूजा करता है जो अरहंत अवस्था को प्राप्त है और जिन प्रतिमा कहलाती है उस जिन प्रतिमा की ही भक्ति पूजा करता है, अभिषेक करता है, तो उनको अकृत्रिम चैतालयों में जाना पड़ता है क्योंकि अभिषेक करने का अवसर यहाँ नहीं मिलता। कहाँ पर? साक्षात समोशरण में भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। अभिषेक तो छोड़ो, उनका चरण स्पर्श भी इंद्र देवता नहीं करता, उसके भीतर उनकी विक्रिया नहीं चल पाती। कुमार अवस्था में तो गोदी में बिठा करके, ऐरावत हाथी में बिठा करके, सुमेरु पर्वत पर ले जा करके उनका अभिषेक किया। ये जन्मोत्सव जन्माभिषेक है। जन्माभिषेक पूजनी नहीं होता, पूजनी होता है वो कौन सा? अकृत्रिम चैतालयों में जिनका हम अभिषेक करते हैं, उन जिन प्रतिमाओं का पूज्य भाव से हम अभिषेक करते हैं और उसका गंधोदक लेकर के धन्य करते हैं। गंधोदक लेते समय इतने उच्च परिणाम रहते हैं, इतने उज्ज्वल परिणाम रहते हैं, उसी विशुद्धि के कारण पाप कर्म धुलने से इंद्र देवता भी धन्य हो जाता है और आप भी धन्य हो जाते हैं। रोमांचित होता है जब अभिषेक लेता है। तो आप अपने मंदिरों में क्या करते हैं? पूजा के लिए और अभिषेक के लिए किसी पुजारी को नियुक्त कर देते हैं और उनके लिए एक मंदिर बना करके दे देते हैं। आप दर्शन तक सीमित रहते हैं और स्वयं आप अभिषेक नहीं कर पाते। अभिषेक के लिए जहाँ इंद्र देवता तरसता है, साक्षात भगवान को देख करके अभिषेक के लिए तरसता है, तो वहाँ नहीं कर पाता। उस बात की पूर्ति के लिए वह यहाँ से भाग जाता है, कहाँ नंदीश्वर दीपों में जा करके वहाँ अभिषेक और पूजन करके रोमांचित हो जाता है और कर्म को धो देता है। बंधुओं, मंदिर बनाओ, मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी करो, सब कुछ करो, लेकिन ये सभी क्रियाएं, पूजा क्रिया, दर्शन क्रिया, अभिषेक क्रिया, स्पर्श क्रिया, नमन क्रिया, तुम खुद अपनी आत्मा के कर्मों को धोने के लिए करो। पुजारियों से मत करवाओ, पुजारियों से अभिषेक करवा के तुम गंधोदक मत लियो। इतना तो करो ना, इतना हो सकता है ना, तब समीचीन रास्ता मार्ग आपको मिलेगा और उससे कल्याण होगा, आपका कल्याण हो। टाइम हो गया है, आगे का कार्यक्रम आप लोगों का बहुत कुछ होना है। आप विवेक से जैन धर्म के तत्वों को समझते हुए, पूज क्या अपूज क्या इसको समझते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप भी यथार्थ मार्ग पर पढ़ने पर सम्यक तो आपको उपलब्ध होगा, वही सम्यक दर्शन विवेक ज्ञान प्राप्त कराएगा और वही विवेक ज्ञान के माध्यम से यदि अपने जीवन में संयम भी आता है तो वह संयम, सम्यक ज्ञान और वो सम्यक दर्शन तीनों मिल करके आपको मोक्ष मार्ग प्रदान करेंगे और वैसी मोक्ष मार्ग पर चलने के बाद आपको घाती कर्म नष्ट होकर के अरहंत पद की प्राप्ति होगी और वही अरहंत पद उसके पश्चात मिलने वाला फिर सिद्ध पद भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह सुख का मार्ग है, इस पर यथार्थ श्रद्धान करके चलना बहुत आवश्यक है। आप स्वाध्याय करें, विवेक से हरेक प्रत्येक काम करें और अपने मंदिरों को वीतराग बनाएं, वीतराग रखें। रागादि भाव से युक्त देव आदि भी होते हैं तो उनकी पूजा के लिए जिनेंद्र भगवान ने उपदेश नहीं दिया है। वीतरागता के उपदेश से ही हमारे पूर्व भव के कर्म कटते हैं और हमारा कल्याण होता है। आप कल्याण मार्ग पर बढ़ करके अपना पुनीत आत्म कल्याण को साकार करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो।
आज का प्रसंग और विषय